इसराइल और ईरान के बीच पिछले कुछ दिन से चल रहे संघर्ष पर ऑस्ट्रेलिया लगातार नजर रख रहा था। मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल और ईरान ने पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की है, हालांकि दोनों देशों की सरकारों में से किसी ने भी समझौते का विवरण जारी नहीं किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ हालिया संघर्ष के दौरान इसराइल का समर्थन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। मंगलवार रात को एक राष्ट्रीय संबोधन में नेतन्याहू ने रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की कार्रवाइयों के समन्वय में ट्रंप की भूमिका की प्रशंसा की और इसे एक ऐतिहासिक घटना कहा और कहा कि इसराइल को व्हाइट हाउस में इससे बड़ा कोई दोस्त कभी नहीं मिला। संघर्ष विराम के कुछ ही घंटे पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने तेहरान पर 50 वर्षों में से सबसे विनाशकारी हमला किया है। उन्होंने कहा, हमने सैकड़ों शासन कार्यकर्ताओं और रेवोल्यूशनरी गार्ड के सदस्यों को खत्म कर दिया। आपको बता दें, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति होने के कुछ ही घंटों बाद एक दूसरे पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, अब कायम होता दिख रहा है। और ये तब हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात की। वहीं इस संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहे 100 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को लेकर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का एक जेट विमान हवाई क्षेत्र खोले जाने के बाद एक प्रमुख इजरायली शहर से बाहर निकल गया। लेकिन विदेश मंत्री पेनी वोंग का कहना है कि अभी भी ईरान से सहायता प्राप्त उड़ाने संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक तैबा ऐश उन 119 यात्रियों में से एक हैं जो टेल अवीव से निकासी उड़ान पर रवाना हुई थी।
Three weeks ago, we had the intention of staying in Jerusalem for half the time and then Tel Aviv. Two Fridays ago, when things started to escalate, we cancelled our Tel Aviv trip and we've been in Jerusalem ever since, been trying to get out.
इस यात्रियों के समूह की जानकारी देते हुए उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स ने कहा कि इस समूह को ऐसी जगह पर रखा गया है जो खतरे के क्षेत्र से बाहर है। स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन टैमी ब्रूस ने बताया, अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की गई और हवाई क्षेत्र को सीमित रूप से खोलने की अनुमति दी गई।
Well, certainly Israel has agreed to the ceasefire. We believe there's a statement from Iran that has done so as well. So those are the statements that we care about.
ऑस्ट्रेलियाई सरकार अभी भी ईरान से निकलने के लिए पंजीकृत लगभग 3,000 और इसराइल में 1,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग का कहना है कि ईरान से सहायता प्राप्त प्रस्थान उड़ाने संभव नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ईरान के राजदूत अहमद सादेगी ने SBS न्यूज को बताया कि उन्हें पता है कि कुछ लोग जमीन के रास्ते सुरक्षित रूप से निकल रहे हैं।
The Ministry of Foreign Affairs and other organizations facilitated some routes. They could use it, you know, to their convenience, either through Iraq and also Turkey and Armenia and also Azerbaijan. I was just a little bit got such a notice that the Australian, the fat, you know, preferred to use the Azerbaijan, you know, the Passover. We do have information that they are passing, you know, safely. My own family was in Tehran for vacation and they are coming back, you know, through the Turkey.
ये संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ जब इसराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी ताकि सैन्य संपत्तियों को नष्ट किया जा सके, ये तर्क देते हुए कि वे परमाणु हथियार विकसित करने की कगार पर हैं। सप्ताह में लड़ाई ने एक ऐसा मोड़ तब लिया जब अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की जिसमें 3 भूमिगत परमाणु सुविधाएं नष्ट हो गई हैं। इसके बाद दोनों देशों के हवाई क्षेत्र को यात्री विमानों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके कारण पेनी वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई दूतावास को खाली करने का आदेश दिया।
Australian government has directed the departure of all Australian officials and dependents and we have suspended our operations in Tehran.
अमेरिका द्वारा ईरान पर की गई कार्रवाई पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में एंथनी अल्बनीजी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया।
We are up front, but we don't talk about intelligence, obviously. But we've made very clear this was unilateral action taken by the United States.
प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी हमलों के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी।
We are up front, but we don't talk about intelligence, obviously. But we've made very clear this was unilateral action taken by the United States.
लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोग इस विचार से सहमत हैं। भूतपूर्व सेनेटर डग कैमरन का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी हमलों का समर्थन करना एक गलती थी और लेबर कॉकस को भी ऐसा ही कहना चाहिए।
I think they've got a moral responsibility. I think they've got a political responsibility. And I think they've got a responsibility for peace and stability around the world, not just in Australia. That they should be raising concerns about the position that's been adopted.
अब जब संघर्ष विराम लागू हो गया है, तो एंथनी अल्बनीजी ने कहा है कि वे इसका समर्थन करते हैं।
We continue to call for dialogue and for diplomacy. As I've said for many days now, we are deeply concerned about any escalation in the region, and that's why Australia called upon Iran to come to the table. And abandon any nuclear weapons program.
SBS News से डेबरा गुरारके की इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है नताशा कॉल ने SBS हिंदी के लिए।